وكذلك عثرنا عليهم، اور اس طرح ہم نے سلپ کر دیا ان کو، یعنی اس طرح ہم نے ان کا پول کھول دیا، ان کی خبر دے دی، لوگوں کو مطلع کر دیا ان سے، اس طرح کس طرح؟ اب یہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب وہ ایک لڑکا ان میں سے گیا بازار، اب وہ جتنے حیران پریشان ہے کہ یہ ہو کیا گیا، آپ خود سوچے نا، 1722 کا کوئی آدمی آج آ جائے، 17، اور یہ 21ویں صدی کے اندر وہ آ جائے، 300 سال پہلے کا اٹھ کے آ جائے، وہ تو یعنی پاگل ہی ہو جائے گا دیکھ کے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا چیزیں اڑ رہی ہیں آسمان کے اندر، اور یہ کیا باتیں خود ہی کر رہے ہیں، اپنے آپ سے پتہ نہیں باتیں کر رہے ہیں، اکیلا بندہ جا رہا ہے اور بولتا جا رہا ہے، پتہ نہیں پاگل ہے کس چیز سے بات کر رہا ہے، یہ کیا بھاگی جا رہی ہیں سڑکوں کے اوپر، یہ راستوں کے اوپر کیا چیز بھاگی جا رہی ہے، انہوں نے کہا کوئی گاڑی دیکھی، نہ کوئی کچھ دیکھا، نہ جہاز دیکھے، نہ فون دیکھے، کچھ ان کو کیا پتا، اب اس کے لیے تو مطلب چکرا دینے والی چیز ہے، اب وہ ٹھیک ہے چلا تو کیا، آپ حیران ہے کہ یہ نہ تو وہ جگہ، نہ وہ سماں، نہ وہ راستے، نہ وہ لوگ، اور یہ پتا چلتا ہے ہمیں کہ مسٹ بی اے بگ سٹی، وہ کوئی بڑا ہی شہر ہوگا، اس لیے انہوں نے کسی ایک کو بھیجا، ورنہ وہ کہتے کہ تمہیں تو سارے وہاں پہ جاننے والے ہیں، سب پہچان لیں گے، لیکن اس کا مطلب ہے کوئی بگ سٹی ہوگا تو ہر ایک کو نہیں جانتا ہوگا، تو اب وہ جب اس نے یہ سارا کچھ دیکھا، تو خیر وہ اس نے تو کھانا لینا تھا، وہ ایک دکان پہ گیا، وہاں پہ اس نے یہ سکہ نکال کے دیا، اب اس زمانے میں سکوں کے اوپر بھی ان کے وقت کے بادشاہ کی مہر یا جو بھی اس کا لکھا ہوتا تھا، جس نے لیا اس نے کہا یہ کیا ہے، اب ایک تو ویسے ہی یہ جو اس کا حال ہولیا ہوگا جو گیا ہوگا، وہ سوچے 300 سال پہلے کے کپڑے تھوڑی وہی ہوتے ہیں جو بعد میں ہوتے ہیں، جو اس کا حال ہولیا، جو اس کی رنگت ہوگی، جو اس کا حیرانگی ہوگی کہ یہ ہو کیا گیا ہے، اب وہ جب وہ اس کا دیکھتا ہے سکہ، تو وہ کہتا ہے یہ تمہیں کہاں سے ملا، کہتا ہے یہ تو ہمارے بادشاہ کا ہے، جو کہ ہمارا بادشاہ، اس نے کہا کون بادشاہ، اس نے ادھر ادھر آؤ، ساتھ والے دکان والے کو ادھر ادھر دیکھو، لوگوں یہ کہاں سے، لگتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی خزانہ آیا، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سکہ بادشاہ کا ہے، بادشاہ وقت کا، اب دیکھیں ایون زبان میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، بولی میں بھی فرق پڑ جاتا ہے کہ اتنے پرانے زمانے کے لوگوں کا اور آج کے لوگوں کا کتنا فرق ہوتا ہے، تو اب وہ جب ایک مجمع اکٹھا ہو گیا، شور مچ گیا کہ یہ جی، انہوں نے اچھا یہ سوچا کہ یہ کوئی کہیں سے چوری کر کے لے کر آیا، یا اس کو کوئی مطلب کوئی خزانہ اس کو کوئی مل گیا ہے، اس کے ہاتھ لگ گیا ہے، اس میں سے یہ لے کر آیا، اس نے کہا نہیں، میں ہم تو کل میں یہاں سے گیا ہوں، اور میرے تو ساتھی بھی وہاں پہ ہیں، اور میں تو اس طرح میرے کو غار کے اندر، اچھا اب کیا ہوا تھا کہ اب تک کے اندر سارا جو شرک تھا وہ ختم ہو چکا تھا وہاں سے، اب یہ سارا شہر کرسچن ہو چکا تھا، اب وہ بادشاہ بھی ظاہر ہے وہ تھوڑی تھا، اس نے کہا ہمارے بادشاہ، انہوں نے کہا کون سا بادشاہ، ہمارا تو یہ بادشاہ ہے، خیر وہاں پہ جو بھی ساری کنورسیشن ہوئی، وہ اس کو ہائر اتھارٹیز کے پاس لے گئے، وہ لڑکے نے کہا کہ بھائی میں اس طرح ہے، میرے ساتھی بھی وہاں ہیں، میری بات پہ یقین نہیں آتا، میں اکیلا تھوڑی ہوں، کوئی پاگل بات کر رہا ہے، تو پھر انہوں نے وہ گئے وہاں پہ غار پہ، اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا، تو وہ لڑکے بھی وہاں پہ تھے، باقی بھی لڑکے تھے، پھر ان کو یقین آیا، اور اس کے بعد یہ لڑکے لیٹ گئے اور ان کو موت آ گئی، سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا پول کھول دیا، لیعلموا تاکہ وہ جان لے، ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا، تاکہ وہ جان لے، کون، وہ جو اس زمانے کے لوگ تھے، وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اس کی جو قیامت ہے نا اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس کو اگر دیکھیں آپ، تو اللہ تعالیٰ کا کون سا وعدہ، اللہ تعالیٰ کے تو سارے ہی وعدے سچے ہیں، لیکن یہ وعدہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ ایک دن قیامت ضرور آئے گی، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ مردے ضرور زندہ ہوں گے، کیونکہ دیکھیں یہ زندہ ہو گئے اگر 300 سال بعد، تو مردوں کو بھی اللہ اس طرح زندہ کر دے گا، اور دوسرا کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اب کیا تھا کہ یہ وہ ٹائم تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو जगाया। ये वो टाइम था जिसमें क्रिश्चियंस के अंदर ये डिबेट चल रही थी, उनके उलमा बैठे इस पे बहस कर रहे थे, कयामत के अंदर जब इंसान उठेगा तो वो रूह और जिस्म के साथ उठेगा या सिर्फ रूह उठेगी, जिस्म तो खत्म हो जाता है। अल्लाह ताला ने उस वक्त इनको उठाया कि ये देख लो, अगर अल्लाह इनको जिस्मों के साथ प्रिजर्व कर सकता है इतना अरसा और इनको उठा सकता है, तो जिस्म और रूह के साथ ही उठेगा इंसान। तो ये हमें बताती है कि अल्लाह ताला के ये वादा भी और हर वादा अल्लाह ताला का सच्चा है, और इसके अंदर इंसान को जरा बराबर भी शक नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखें, जब इंसान अल्लाह ताला के कोई वादे को भी सुनता है ना कुरान में, मिसाल के तौर पे कयामत के दिन के वादे हैं, मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ईमान वालों को फलाह देगा, अल्लाह ताला काफिरों को ये अजाब देगा, और भी जितने भी वादे हैं अल्लाह ताला के, जब इंसान ये सुनता है, शैतान उसके दिल के अंदर शकों को शुभार डालता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा, ये उस वक्त इतना सा भी डाउट नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ताला के वादे शायद हो सकता है ना पूरा हो, नहीं। ठीक है, तो अल्लाह के वादे सारे ही सच्चे हैं। ईमान वाले को इस चीज के ऊपर उसका दिल मुतमईन होना चाहिए। ठीक है, दूसरे ये हमें बात भी पता चलती है कि कयामत का यकीन हमारे दिल में होना चाहिए। मतलब उसमें भी कहीं शक का जर्रा नहीं होना चाहिए। ये कुरान हर जमाने के लिए, उनके लिए भी था और आज का भी, जो एथीस्ट है या जो आखरत पे यकीन नहीं रखने वाला, वो इस वाक्य को पढ़ के अपने लिए नसीहत ले सकता है कि अल्लाह दोबारा खड़ा करेगा। और जब इंसान को यकीन आ जाए ना कयामत के दिन के ऊपर, हमें असल में यकीन हमारा कमजोर होता है, ठीक है तो सही लेकिन कमजोर है। जब जब ये अकीदा ना बहुत पक्का हो जाता है ना, तो आप बिलीव मी, दुनिया को देखने का एंगल बदल जाता है। गम आते हैं ना, फिर इंसान कहता है कि ये गम भी मेरे आखरत में दर्जे बुलंद कर रहा है। फिर कोई कोई परेशानी आती है ना, तो तब भी इंसान कहता है मेरे गुनाह झड़ रहे हैं। कोई बीमारी भी आती है ना, तो इंसान को लगता है कि ये भी बीमारी भी मेरे गुनाह झाड़ रही, मुझे साफ कर रही है और अल्लाह ताला मुझे आजमा रहा है, इसके अंदर मेरी आजमाइश है। कोई खुशी भी मिलती है तो आजमाइश है, कोई दौलत मिलती है, पैसा मिलता है, तो पता नहीं मैं आपे से बाहर ना कहीं हो जाऊं, कहीं मेरे अंदर तकब्बुर ना आ जाए, अल्लाह ताला ने अब मुझे देखना है कि मैं क्या करती हूँ, मुझे इसका जवाब देना होगा। कहीं कुछ कुछ गलत करने का की कोई चांस मिल भी जाए तो इंसान, कोई उभारे भी उसको कोई गुनाह करने पे, तो इंसान कहता नहीं मैं कहीं अल्लाह की नजर से ना गिर जाऊं, मुझे तो उसके सामने जवाब देना है, मुझे तो उसके आगे खड़े होना, क्योंकि हर वक्त उसकी जो दिमाग चल रहा होता है ना आखरत के ऊपर चल रहा होता है, वो वहां के मुताबिक प्लस और माइनस करता है, वहां के मुताबिक देखता है वहां पे किस इस चीज में वहां का क्या फायदा है या इस चीज में वहां का क्या नुकसान है। समझ आई? तो इसको इतना मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी जिंदगी को इफेक्ट करता है, हमारे सारे कामों को इफेक्ट करता है, हमारी डेली लाइफ पे इसका असर पड़ता है। ये यकीन सिर्फ अंदर नहीं होता, ये यकीन पूरी जिंदगी में ढल जाता है, फिर गम और खुशियां ही बदल जाते हैं। बहुत दुनिया को कोई बड़ा नुकसान भी, बड़ा नुकसान नहीं लगता फिर, और दुनिया को बहुत बड़ा फायदा भी मिल जाए तो बहुत बड़ा नहीं लगता वो। ठीक है, बहुत सारी जाविया इंसान का ना सोचने का बदल जाता है। और ये जो है ना वादे सारे सच्चे हैं, अल्लाह का दीन गालिब आएगा, ये भी तो एक वादा है। फिर इंसान को अगर वाकई ये है कि अल्लाह का दीन गालिब आएगा, तो फिर वो परेशान क्यों होता है? अल्लाह का वादा है ना, ये दीन हर जगह दुनिया के कोने कोने में फैल जाएगा, अल्लाह का वादा है। अल्लाह ताला का वादा है ये कि वो जरूर ईमान वालों की मदद करेगा, फिर क्यों इसमें डाउटफुल होते हैं? तो अल्लाह का हर वादा सच्चा है, चाहे वो फौरी तौर पे हमारे सामने आ जाए या कुछ अरसा उसमें लगे, लेकिन जो भी कुरान में है, जो भी आप की जुबानी हम तक पहुंचा, वो सब सच है और सच हो के रहेगा। ये बार बार कुरान रिमाइंड कराता है। अगर अल्लाह ताला कहता है कि मेरी रास्ते में तुम वक्त दोगे तो मैं तुम्हें बरकतें दूंगा, मैं अपनी रहमतों में ले लूंगा, मैं तुम माल खर्च करोगे, एक पैसा खर्च करते हो तो दुनिया में 10 गुना दूंगा, आखरत में 70 गुना दूंगा। ये वादे हैं ना सारे, तो फिर क्यों नहीं हम इनको सच समझते? अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम अपनी मेरे साथ सौदा कर लो, तुम मेरे साथ ये सौदा करोगे अपनी जान और माल का, तो मैं तुम्हें ये दूंगा। ये सब वादे ही है ना, क्यों नहीं यकीन आता? अल्लाह की मदद सबर करने वालों के साथ है, इस पे यकीन ही नहीं आता। तो अल्लाह का हर वादा सच्चा है। इज यतनाजा होना बैना हम अमरा हूं, जब वो बहसें करने लगे अपने आपस में इस मामले पे, अच्छा वो जब आए ना, उन्होंने वार देखा ऐसे हो गया और फिर वो फौत हो गए हैं जो लड़के थे, तो अब बजाय इसके कि वो इस चीज के ऊपर यकीन करते कि देखो आखिरत इस तरह से, वो और ही बहसों में पड़ गए। उनकी बहसें क्या थी? फकाल उबनू अलैहिम बुनियादा, देखो अब ये तो कितनी बड़ी बात हो गई ना, अब हमें लगता है इसके ऊपर कोई मॉन्यूमेंट बना ले, कुछ यादगार इसके ऊपर बना ले, ये तो यादगार बन जाए हमारे लिए, यहाँ पे कोई इमारत बना लो। तो मतलब यादगारें बनाने का वैसे भी हमें बहुत शौक होता है ना, कि हर जगह हमने यादगार जरूर रखनी थी। यादगार है तो अपने माँ बाप की तस्वीरें लेके दीवारों पे लगाई हुई, क्या यादगार है ये गलत काम है जो नहीं करना चाहिए, मगर हमें यादगार लगाने का शौक है। हम यादगार में उनके लिए हम ये बना देते हैं, उनके ऊपर कोई मजार बना देते हैं, उनकी यादगार है। ऐसी यादगारों की कोई अहमियत नहीं है, यादगार उनके अमल थे, क्या आप उनके अमलों से सबक लें, ये उन्होंने क्या नेकियां की, वो आपके लिए यादगार होनी चाहिए ना, उनकी तस्वीरें यादगार हैं। बाकायदा कई लोगों ने माँ बाप की, अपने बुजुर्गों की तस्वीरें दीवारों पर लगाई थी, जब इसे मना किया गया तो उन्होंने कहा कि इनकी हया प्यार बनाओ। अब देखिए ना, ये वो किस्सा है जिसमें अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी अपनी एक निशानी दिखाई है। दुनिया की जिंदगी और मटेरियलिज्म के दरमियान जो मुकाबला है उसके अंदर दिखाया उन्होंने, क्या चूज किया, देखो उनके साथ क्या हुआ, और इनका सारा फोकस और हमें भी सारा फोकस यही होता है कि बजाय कि किसी चीज से हम असल सबक लें, मकसद ये था कि ये लोग समझें कि अल्लाह ताला दोबारा उठाएगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, अल्लाह के वादे सच्चे हैं, बजाय वो आखरत की तरफ डाइवर्ट करें, उसके तरफ वो ख्याल है, वो यादगारें बनाने के चक्कर में लग गए। रब्बुहुम आलमु भी है, उनका रब उनको ज्यादा जानता है, यानी उनकी हकीकत क्या थी, ये वो जो उस वक्त बहसे कर रहे थे उनको भी नहीं ज्यादा पता था। قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا, जो वो उसमें गलबा पाने वाले थे उनके मामले पे, यानी जो जिनकी ज्यादा बात चलती थी वहां पे, तो उन्होंने कह दिया कि इनके ऊपर हम मस्जिद बना लेते हैं। अब मस्जिद का मतलब क्या होता है? मस्जिद का मतलब, जैसे हम आपको पता है कि मस्जिद उस जगह को कहते हैं जहां पे इंसान इबादत करता है। अब वो आपके घर का कोई कोना भी हो सकता है जिसमें आप हमेशा इबादत करती हैं, वहीं पे हमेशा नमाज पढ़ती, वो भी मस्जिद हो सकती है। और इसी तरह मस्जिद एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, जिस जैसे इमारतें हम बनाते हैं जिसको हम मस्जिद कहते हैं, वो भी हो सकता है। अब वो आप कहेंगे वो तो मुसलमान नहीं थे, उनकी मस्जिद क्या मतलब, मस्जिद इबादत की जगह को कहते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि हम इसको एक इबादत की जगह बना लेते हैं, कि यहाँ पे कितनी बड़ा ये काम हुआ है, तो हम इसको एक मतलब ये भी एक निशानी होगी कि मस्जिद बनाई जाए वहां पे। पूछने का नहीं जी, यहाँ पे इमारत बनाई जाए। तो हो सकता है उन्होंने उस वक्त फिर मस्जिद बना ली, क्योंकि उनका उनकी राय ज्यादा समझी जाती थी। अब यहां से बाज लोगों ने ये अकीदा ले लिया कि फिर देखो जी सूरह कहफ में ये है कि वहां पे मस्जिद बनाई जाए, तो मस्जिद उन्होंने बनाई तो हम भी मस्जिदें बनाते हैं फिर उसके ऊपर, अपनी कब्रों के ऊपर, कि नेक बुजुर्ग की कब्र है, उसके ऊपर है, हम मस्जिद बना लेते हैं। हालांकि देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि इसमें कुछ अप्रिशिएट नहीं किया गया यहाँ पे। ये एक बताया गया कि वो देखो किन बहसों में पड़ गए, अल्लाह ताला ने क्या बताया था वो आपस के अंदर इसी के ऊपर। ये नहीं कहा गया कि बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने देखो कितनी अच्छा काम किया कि मस्जिद बना ली। ठीक है, पहली तो बात ये। अगर चलो मान भी लिया जाए, आपकी ये बात भी मान ली जाए कि भाई उन्होंने तो मस्जिद बनाई थी, तो ईसाइयों की तो यही बात के ऊपर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी वफात से कुछ दिन पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अल्लाह की लानत हो यहूदो नसारा पर जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को इबादत की जगह बना लिया। लानत की इस बात के ऊपर, और हम वही काम कर रहे हैं, वही काम करते हैं कि हम कब्रों के ऊपर मस्जिद बनाते हैं। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल्लाह मेरी कब्र को वसन ना बनाना। वाओ से तीन नुक्तों वाली, और नून वसन कहते हैं सिर्फ बुत को नहीं कहते, बल्कि कोई भी चीज जिसकी अल्लाह के अलावा इबादत की जाए वो उसको वसन, मेरी कब्र को यानी इबादत की जगह ना बनाना। अरे आप सल्लल्लाहु की दुआ कबूल हुई, इसीलिए आपकी कब्र बंद है, खुली भी नहीं है। और बल्कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन लोग वो होंगे जिन पर कयामत कायम होगी, और वो लोग जो कब्रों को इबादत गाह बनाते हैं। अल्लाह हु अकबर, इतनी बड़ी बात के बावजूद के बदतरीन लोग होंगे जो कब्र पे मस्जिद बनाते हैं, उसके बावजूद आज देखें हमारे यहाँ कितने मीजार हैं, सब पे मस्जिदें हैं, सब पे मस्जिदें। अगर आप मुस्लिम दुनिया के अंदर गिने तो कहते हैं कि कहीं पढ़ा कि 10 लाख या इससे भी ज्यादा मीजार हैं जो मुस्लिम दुनिया के अंदर हैं। और ये कितनी एक अफसोस की बात है, नहीं सॉरी, 1 लाख से ज्यादा मीजार हैं जहां लोग जम के जाके इबादत करते हैं, जहां पे सज्दे होते हैं, जानवर सेवा किए जाते हैं और ये सब होता है। आप हजरत इमाम हुसैन के मीजार पे ही देख लें कितने लोग वहां पे जाते हैं, बहिश्ती दरवाजा देख लें वहां से कितने लोग गुजरते हैं। और बाज मिजारों की तो आमदनियां मिला ली जाए ना तो मुल्कों का पूरा बजट बन जाता है, इतनी आमदनी है। तो जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं, तो बल्कि मुस्लिम की हदीस है, अगर तुम किसी कब्र पर मिजार पाओ, यानी उसको बड़ा किया हुआ, लोग वहां पे उसको मिजार बना के बैठे हैं, तो उसको गिरा दो। बल्कि ये तक फरमाया कि आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लिए पूरी जमीन मस्जिद बना दी गई सिवाय दो जगहों के, एक कब्रिस्तान और एक हमाम, बाथरूम और कब्रिस्तान। यानी कब्र के ऊपर नहीं आप इस तरह से पढ़ सकते नमाजें। और इसलिए उलमा कहते हैं कि अगर किसी मस्जिद के अंदर कब्र बना दी जाए किसी की, किसी को अंदर मस्जिद के दफन कर दिया तो कब्र वहां से हटाई जाए, और अगर कब्र के ऊपर मस्जिद बना दी है तो मस्जिद को गिरा दिया जाए। आपसे सर ने फरमाया कब्रों पे मत बैठो और कब्रों की तरफ मुंह करके नमाज ना पढ़ो, और ना ही कब्रों पे इस तरह से नमाज के लिए खड़े रहो। यानी कब्रों के ऊपर खड़े होके इबादत करना ये मना किया गया। आप दुआ भी करते हैं तो किबला रुख होके करनी चाहिए। आज देखें जगह जगह कब्रें, जगह जगह कब्रें, आप कोई शहर नहीं ऐसा देखते जहां पे कब्रें ना हो। कब्रें तो हैं, मतलब मिजार ना, कि मिजार पूरे बनाए हैं, वहां पे उनको उनकी इबादत की जा रही है, वहां पे सज्दे भी हो रहे हैं, वहां पे चादरें चढ़ाई जा रही हैं, वहां पे देगें दी जा रही हैं, वहां पे दुआएं की जा रही हैं, वहां पे धागे बांधे जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, जब हमारे नबी ने उन लोगों के ऊपर लानत की है कि जो उन्होंने अपनी अंबिया की और नेक लोगों की कब्रों को इबादत गाह बनाया, तो हम क्यों ऐसा करें। और दूसरी ये इतनी बड़ी बात है, आप देखें आपसे सलम की हदीस को छोड़ के कई लोग कहते नहीं जी हम इस चीज को मानते हैं। अच्छा चलो, आप किस इमाम को मानते हैं, किसी को मानते होंगे आप, ये मैं आपको बता दूं, आप इसको चेक कर लें, बेशक हनफी शाफी मालिकी हम्बली सब चारों आइम्मा कराम ने कहा ये हराम है, हराम। और ये तो बहुत बाद में, इमामों के भी बाद में लोगों ने ये ऐसी चीजें शुरू की कि कब्रों के ऊपर मस्जिदें बना रहे हैं। अब आप कहेंगे आप सल्लम की कब्र पे भी तो है। देखिए याद रखें, सहाबा कराम भी गुजर गए, उनके बाद भी गुजर गए, अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर के अंदर जाके 200 साल शायद गुजर गए थे, उस वक्त जाके जब एक्सपेंशन की मस्जिद की, तो इस तरफ से उसने थोड़ी एक्सपेंशन की, वरना तो पहले सहाबा के दौर में भी एक्सपेंशन हुई, दोनों दूसरी तरफ को एक्सपेंशन होती रही, कब्र की तरफ को नहीं की गई, इस तरफ को उसने एक्सपेंशन की थी, वरना यहां पे एक्सपेंशन नहीं थी। और उसमें भी आप सल्लम की कब्र मुबारक तो बिल्कुल उसमें बंद है, और आप सल्लम की कब्र वहां पे मस्जिद में नहीं बनाई गई थी, मस्जिद अलग थी, हजरत आयशा का हुजरा था ये, लेकिन पैगंबर को वहीं दफन किया जाता है जहां पे वो फौत होती, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है, तो आप सल्लम को वहीं दफन किया गया। अब एक्सपेंशन जब हुई तो फिर मस्जिद के अंदर ही वो जगह भी आ गई, लेकिन ना तो आप उस तरफ मुंह करते हैं, आपको पता है ना मुंह भी दूसरी तरफ होता है, कब्र साइड पे है, आपने अगर रियाजुल जन्नत गए हो तो आप देखते हैं कब्र मुबारक तो साइड पे है, उसकी तरफ तो नहीं मुंह होता किसी का भी, और आप इन मेजारों पे जाके देख लें, वहां पे सब पे कब्रों के सामने सजदे हो रहे होते, नमाजें भी कोई पढ़ते हैं लोग। सयकुलूना सलासतुन राबिउन कल्बुहुम वयकुलूना खमसतुन सादिसुन कल्बुहुम। अच्छा वो इन बहसों में ही पड़ गए, अनकरीब वो कहेंगे नहीं जी वो तो तीन थे, चौथा उनका कुत्ता था, वो तो पांच थे, छठा उनका कुत्ता था, रजमम बिलगईब, ऐसे ही बस बगैर जानते हुए वो अपने उसमें तीर हवा में तीर चला रहे हैं। वयकुलूना सबअतुन वसामिनुन कल्बुहुम, और वो कहेंगे सात और आठवां उनका कुत्ता था, यानी उनको भी नहीं पता था कि असल हकीकत क्या है। लोगों ने इससे लेसन नहीं लर्न किया, वो इन्हीं बहसों में पड़ गए कि कहा वाले थे कितने, हालांकि इससे क्या फर्क पड़ता है कि कितने थे, इसमें इतना बड़ा सबक है ना इस आयत में, कि सोचें आप कि यानी बेकार की बहसें करना जिसका कुछ हासिल नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रजमम बिल गई, पहली दो उनकी बातों को रजमम बिल गई कहा गया, तीसरी बात को नहीं कहा गया, इसलिए उलमा कहते हैं वो सात थे और आठवां कुत्ता था, और पिछली बात से मैंने काला और कालू और कालू जो आपको बताया 8:19 आयत में, तो उसमें देख लें एक काला और कालू तीन एटलीस्ट वो होंगे, फिर कालू आया तीन एटलीस्ट होंगे, तो सात हो गए, लेकिन कुल रब्बी आलम भी इद्दत ही माए आलम हूँ मिल्ला कलील, तुम्हारे रब को बेहतर मालूम है। ये कोई बातें इररेलीवेंट के सवाल ये बहसें हैं, ये फायदामंद नहीं है, ये नहीं करना चाहिए जो दिमाग में आए बस वो पूछने बैठ जाएं कितने थे कितने थे क्या करते थे क्या नहीं। बाज लोग सवालात इतने बेतुके करते हैं जिनके कोई सवाल भी इंसान की ना बताता है कि इस बंदे के अंदर कितनी समझ है, तो सवाल पूछने से भी पहले सोचना चाहिए कि इस सवाल का मेरे अमल से कोई ताल्लुक है। अब क्या नबी ऊपर आसमानों पर क्या कर रहे हैं, अब ये सवाल कोई कि क्या इसका मतलब हमारे अमल से ताल्लुक, तो इसलिए समझदारी के बात करनी चाहिए और उसके ऊपर ही यानी आपस के अंदर डिस्कशन करनी चाहिए, ना कि ऐसी बातों पे बहस करें जिनका कोई हासिल नहीं है। फला तुम्हारी फीहिम इल्ला मिरा ज़ाहिरा वला तस्तफ्ती फीहिम मिनहु अहदा, तो फरमाया कि ना तुम झगड़ा करो इस बारे में मगर झगड़ा ज़ाहिरन, ज़ाहिरन मतलब है यानी एक इसका माना है हुज्जत, यानी इंसान को जिस बात का पता हो बस उसके ऊपर बात करे, जिसका पता नहीं है तो उसके ऊपर ना बात करे, जो हुज्जत जिसके साथ दलील हो वो वाली बात करे, वरना खामोश रहे, जैसे अभी बात हुई कि अगर इल्म नहीं है ना तो खामोश रहे, बहसें ना करें, तो बहस आप डिबेट भी करते हैं ना किसी के साथ तो इल्म के साथ बात होनी चाहिए। और जाहिरन का मतलब एक ये भी है कि जाहिरी जाहिरी करें, इसको दिल पे ना ले, जज्बाती मसला ना बनाए, हम तो कोई बहस करने लगते हैं जज्बात हमारे ज्यादा उबलने लगते हैं, ठीक है। वला तस्तफ्ती फीहिम मिनहुम अहदा, और इनमें से किसी से आप फतवा भी ना पूछें कि आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता है, अल्लाह ताला को पता है, यानी ये यहूदो नसारा से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास भी तो ये स्टोरी है, अल्लाह ताला को इसका पता है। वला तकूलन्ना लिशैइन इन्नी फाइलु ज़ालिका गदा, और ना आप किसी चीज को भी कहें कि मैं ये करूंगा कल। अब देखें यहाँ पे वो जो तीन सवालात उन्होंने किए थे ना, तो मैंने आपको बताया कि वही नहीं आई, आप सरसर ने फरमाया कल आ जाएगी लेकिन नहीं आई, और 15 दिन के बाद आई, तो उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए थे इंशाल्लाह कहना, तो इंशाल्लाह कहना इतना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने खुद ये इंस्ट्रक्शन दी है कि कोई चीज को कभी भी ये ना कहें कि मैं कल ये करूंगा। कल से मतलब ये नहीं कि जरूरी कल ही हो, मतलब फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए कोई भी काम आपने कहना हो तो जरूर ये कहें इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर ये कि अगर अल्लाह ने चाहा, यानी इनशा अल्लाह जरूर कहें। इनशाला को आपने लिखना है तो एक साथ नहीं लिखना, इन अलग लिखना है, शाह अलग लिखना है और अल्लाह अलग लिखना है। इन अगर शाह चाहा अल्लाह ने, तो यानी जब इंसान ये कहता है ना तो असल में वो अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो ये काम होगा, मेरी ताकत से नहीं हो सकता, मेरी कुव्वत से, मेरे इरादे से नहीं हो सकता। और दूसरे इसका फायदा ये होता है कि अल्लाह के नाम की बरकत भी उसमें शामिल हो जाती है। तो चाहे अगर आपको यकीन भी है कि ये काम तो मैं हो कर ही लूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मेरी पावर में ही है, ये इस मतलब अब जैसे एक बंदा था वो अपना गधा बेचने के लिए बाजार गया, लोगों ने कहा किधर जा रहा, कह रहा मैं गधा बेचने के लिए जा रहा हूँ, मैं गधा बेचूंगा। तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह कहो कि बेचूंगा, तो इंशाल्लाह कहो। वो कहने लगा इंशाल्लाह क्या कहने की जरूरत है, मेरे पास गधा भी है, बाजार भी सामने है, सबको गधे की जरूरत भी है, तो मैं क्यों कहूँ। वो बाजार गया, वहां से किसी ने उसका गधा ही चोरी कर लिया। तो फिर लोगों ने पूछा तूने गधा बेच दिया, उसने कहा हाँ इंशाल्लाह बेचा नहीं है मैंने। अब क्या फायदा इंशाल्लाह का। तो इंशाल्लाह उन चीजों पे भी कहना जो आपको कंफर्म है कि ये तो हो ही जाना है, फिर भी जरूर कहें इंशाल्लाह। और हमेशा मुस्तकबिल के बारे में कहें, ये नहीं कि पास्ट की कोई बात कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को बिल्कुल ही समझ नहीं होती कि वो इंशाल्लाह कहाँ कहना है, बस तकिया कलाम बनाएगा। आप मतलब मेरे से पूछे आपका नाम क्या है, मैं कहूँ मेरा नाम नजीहा है इंशाल्लाह। अच्छा आप क्या करती हैं, जी मैं पढ़ाती हूँ इंशाल्लाह, और हम वहां गए थे इंशाल्लाह और हम वहां से आए थे इंशाल्लाह। इस तरह किसी चीज का मजाक नहीं बना लेना चाहिए। जब अल्लाह ताला ने फरमाया ना जब गदन, जब यानी आपने फ्यूचर का कोई काम करना हो तब ये कहे, ऐसे ही नहीं कि बात बात पे इंशाल्लाह, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ठीक है। तो और ना ये फिल इन द गैप्स करने के लिए कि आप तकरीर करने खड़े में कुछ और नहीं आ रहा तो हर जुमले के साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक साहब को देखा कि वो स्टेज पे खड़े हैं, उनकी बात कम थी और हर बात इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो अभी है जो पहले हो चुका उस पे भी इंशाल्लाह ही बोले जा रहे। तो ऐसे लग रहा था कि फिल इन द गैप्स, कि जहां पे कुछ बात समझ नहीं आ रही तो वहां पे इंशाल्लाह। इसमें एक और टिकी मसला भी आपको बता दूंगी, जब कसम खाने लगे तो तब भी आपको चाहिए कि इंशाल्लाह कह दें कि मैं कसम खाती हूं कि मैं आपके घर कल आऊंगी। तो इंशाल्लाह अगर आपने कह दिया तो अगर आप नहीं जा सके, कसम तोड़नी पड़ गई, तो अब आपके ऊपर कफारा नहीं होगा, गुनाह नहीं होगा, क्योंकि आपने कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा, ठीक है। लेकिन इसको इस पे भी नहीं यूज करना चाहिए कि इरादा हो ही नहीं और बस इंशाल्लाह कहते जाए, तो दूसरे को डिसीव करने के लिए, धोखा देने के लिए नहीं करना चाहिए ये, ठीक है। तो इससे ये फायदा है। और ये वज़्कुर रब्बा का, और अपने रब का जिक्र करो, इजा नसीता, जब तुम भूल जाओ, यानी ये कब के लिए, यानी अगर इंशाअल्लाह कहना भूल गए तो जिस वक्त याद आए, चाहे आपको 2 घंटे बाद याद आए, बल्कि इब्ने अब्बास कहते हैं चाहे साल बाद तुम्हें याद आए उसके ऊपर इंशाअल्लाह कह लो उस वक्त, जब भी आपको याद आए कि मैंने उस वक्त ये बात कही थी, मैंने इंशाअल्लाह नहीं कहा था, ठीक है। तो क्योंकि इब्ने अब्बास कहते हैं कि जब तुम मुस्तकबिल में कुछ काम करने का इरादा करो तो अल्लाह को याद करो, वरना हो सकता है कि अल्लाह तुमको सजा दे और वो काम ना होने पाए, जैसे तुम चाहते हो वैसे ना हो सके, ठीक है। तो इसलिए इंशाअल्लाह कह देना चाहिए। दूसरा इसका मतलब ये कि जब भी तुम अल्लाह का जिक्र करना, क्योंकि अल्लाह का जिक्र हर वक्त करना चाहिए, जब करना भूल जाए तो फिर तुम अल्लाह का जिक्र कर लिया करो, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही है कि अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो जब भी भूल जाए, तो ऑलवेज अल्लाह ताला को, कभी जैसे इंसान को कई दफा ही हमें भूला रहता है, जो ही याद आए कि मुझे अल्लाह का जिक्र करना चाहिए तो फौरन कर ले, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसे कह दिया करें, ठीक है। तो ये भी एक है। तीसरी एक इसमें बात है कि कोई काम भूल जाए ना आपको, मसलन आए उसका नाम क्या था, जहन में ही नहीं आ रहा, तो अल्लाह का जिक्र कर लिया करो। यानी कुछ भी काम भूल जाए, कोई भी चीज भूल जाए, कई चीजें हम भूल जाते हैं, जहन से निकल जाती हैं, बल्कि कईयों ने कहा, हफाज ने कहा कि जब हमें हिफ्ज में कोई आयत भूल जाती है ना तो फिर भी हम अल्लाह का जिक्र करने लगते हैं, कुछ किसी किस्म का भी जिक्र कर लें, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या इन्ना लिल्लाह या कुछ भी आप कह सकते हैं, तो उससे क्या होगा इंशाल्लाह वो चीज वापस याद आ जाएगी। और तीसरी एक और भी इसका इकरमा कहते हैं कि इजा नसीत का मतलब है जब तुम्हें गुस्सा आ जाए, यानी जब तुम्हें गुस्सा आए तो तब अल्लाह को याद कर लिया करो। उन्होंने इसकी ये इंटरप्रिटेशन की है कि औजुबिल्ला कह दिया करो या जो भी अल्लाह ताला को नाम ले लिया करो, तो फिर फिर शैतान भाग जाता है, आपको पता है वैसे भी से, ठीक है। तो इसके लिए तीन चार माने हो गए, वकुल असा यहदीयनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा, और तो कह दीजिए कि करीब है, बहुत उम्मीद है। और मैंने आपको बताया अल्लाह ताला के लिए जब असा का लफ्ज आए तो इसका मतलब क्या है कि यकीनन ये बात होगी कि अल्लाह ताला मुझे इससे बेहतर की रहनुमाई कर दे, उसे करीब कर दे। यानी जब भी आप प्लान करें तो हो सकता है कि आप का प्लान से बेहतर अल्लाह ताला आपको कोई प्लान दे दे। यानी आपने कुछ सोचा हुआ और अल्लाह ताला कुछ और उससे भी बेहतर आपके ऊपर, जब आप इंशाल्लाह कह देते हैं ना, तो उससे बेहतर आपको किसी चीज की रहनुमाई करते हैं। मसलन आपने प्लान किया हुआ कि मैं आज फलानी जगह मैंने जाना है, मैं एयरपोर्ट जाऊंगी, मैं जहाज में बैठूंगी, आपकी फ्लाइट मिस हो जाती है, तो आपको अल्लाह ताला ने आपकी फ्लाइट मिस कराई क्योंकि उस फ्लाइट के अंदर कुछ ऐसा मसला हो जाना था। तो अब वो जो अल्लाह का प्लान है वो उससे बेहतर है जो आपने सोचा था, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई करे उससे भी बेहतर के लिए, जो हिदायत में उससे भी ज्यादा रहनुमाई बेहतर की चीज की कर दे, जब आप इंशाल्लाह कह देते हैं। वाला भी सूफी काफी सलासा मी अतिन सिनी नवजदादो तिसा, और वो गार के अंदर रहे सलासा मी अतिन, 309 नौ उसके अंदर इजाफा किया गया। अब उनके अंदर ये भी नहीं उनको पता था कि कितने साल, अभी भी एक हिस्टोरियन ने लिखा 370 साल वो सोए रहे थे, तो इनमें से किसी को नहीं पता, अल्लाह ताला ने बता दिया 309 साल। और बाद में उलमा ने कहा कि वो लोग जो 300 साल कहते हैं वो शमसी साल है और ये कमरी साल है, इससे हमें पता चलता है कि कमरी साल में ही हमारी जो सारी इबादात और अल्लाह ताला ने ये भी बातें कमरी साल के मुताबिक बताई है, तो हमें कमरी सालों का पता होना चाहिए, जो लूनर कैलेंडर है उसके मंथ हमें याद होने चाहिए, हमारी सारी इबादात उससे है। कुल अल्लाह आलम बिमा लबिसू, कह दीजिए अल्लाह ज्यादा जानता है कितना वो ठहरे। और तुम कह रहे, कोई कह रहा है 300 साल, कोई कह रहा है 350 साल, कोई कह रहा है 309 साल, अल्लाह को पता है। लहू गईब समावाती वल अर्द, उसके लिए है गैब आसमानो जमीन का, यानी कोई चीज उससे छुपी भी नहीं है, सब वो जानता है। और अल्लाह ही गैब का जानने वाला, लहू शुरू में आ गया ना, तो अल्लाह ही है जो गैब को जानने वाला है। अब उसे भी ही वास में, ये वाली बात थी जो मैं आपको वहां पे कह रही थी कि कितना अच्छा देखने और सुनने वाला है, कितना अमेजिंग है अल्लाह ताला के, तुम्हें तो नहीं पता कि वो क्या उस वक्त कर रहे थे या क्या कह रहे थे, उनकी क्या कन्वर्सेशन थी, वो किस हाल में थे, उनके दिल में कितना यकीन था, वो कितनी यकीन से बात कर रहे थे, ये डायलॉग तुम्हें नहीं पता कि वो उन्होंने उठ के क्या कहा, वो कह रहे थे हमें अज़का ताआम ला के दो, ये कोई बात तुम्हें नहीं पता थी, लेकिन अल्लाह कितना अच्छा देखने और सुनने वाला है कि उसको पता है, वो सुन रहा था और उसने हमें बताया, और वो जानता था, वो देख रहा था उन लोगों को। मा लहुम मिन दूनिही मिन वलीयिन वला युशरिकु फी हुक्मिही अहादा, उनके लिए नहीं, उनके लिए उसके सिवा कोई दोस्त और ना वो शरीक करता है अपने कानून में, अपने फैसले में किसी एक को। वो परफेक्ट है देखने और सुनने वाला, उससे जिसने उसको वली नहीं बनाया तो उसके सिवा उसका फिर कोई वली नहीं है, ठीक है। और दूसरी ये बात कि वो अपने फैसले में किसी को शामिल नहीं करता, इसको कब उठाना है, उनको कब जिंदा करना है, या उसने जितने भी फैसले किए हैं, या उसने जो कानून बनाए हैं, जो हमें शरीयत दी है, मन अहसन मिन अल्लाह हुक्मा, अल्लाह किसी बेहतर किसकी बात हो सकती है, तो उससे बेहतर कानून कोई नहीं दे सकता, तो वो अपने कानून में भी किसी को शरीक नहीं करता कि किसी से पूछ के कुछ करे।